दानियल की पुस्तक संख्या 116 प्रतिशोध के दिनों का रहस्य उद्घाटन, यिर्मयाह की चेतावनी और अंतिम पीढ़ी का एक भविष्यवाणी परक अन्वेषण। पिछले लेख में हम यिर्मयाह अध्याय 50 पर विचार कर रहे थे और उस खंड में बाबेल पर होने वाले न्याय का वर्णन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से शुरू होकर परमेश्वर के क्रोध पर समाप्त होता है। निष्पादन न्याय प्रभु के प्रतिशोध का वो दिन है जिसका प्रतिनिधित्व सन 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश द्वारा किया गया था। 70 ईस्वी में रोम द्वारा किया गया यरूशलेम का विनाश उससे पहले नबूकदनत नसर द्वारा किए गए यरूशलेम के विनाश द्वारा पूर्व चित्रित था। इन दोनों ने मिलकर सूर के वेश्या के निष्पादन न्याय के दो गवाह प्रदान किए, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 की वेश्या भी है। यिर्मयाह हमें बताता है कि जब प्रभु का प्रतिशोध आधुनिक बाबुल पर पूरा होगा, जिसकी शुरुआत शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से होगी, तब उन दिनों और उसी समय प्रभु कहता है, इसराइल का अधर्म खोजा जाएगा और वो न मिलेगा, और यहूदा के पाप भी, पर वे न मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं शेष रखूंगा उन्हें मैं क्षमा करूंगा। उन दिनों 144,000 की मुहरबंदी पहले ही पूरी हो चुकी होगी।
भाइयों, तैयारी के महान कार्य में आप क्या कर रहे हैं? जो लोग संसार के साथ एक हो रहे हैं वे सांसारिक सांचे में ढल रहे हैं और पशु के चिन्ह के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो अपने आप पर अविश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं और सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को शुद्ध कर रहे हैं, ये स्वर्गीय सांचे में ढल रहे हैं और अपनी ललाट पर परमेश्वर की मुहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब आज्ञा जारी होगी और मुहर लगा दी जाएगी, तब उनका चरित्र अनंत काल तक शुद्ध और निष्कलंक बना रहेगा। गवाहियां, खंड 5, 400।
कार्यकारी न्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की दूसरी वाणी से आरंभ होता है, जो स्त्री पुरुषों को बाबुल से भाग निकलने के लिए बुलाती है, और यिर्मयाह कहता है उनका दिन आ गया है, उनकी सुधि लेने का समय। जो बाबुल देश से भागकर निकलते हैं उनकी आवाज ये है कि सियोन में हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर का प्रतिशोध, उसके मंदिर का प्रतिशोध घोषित किया जाए। बाबुल के विरोध में धनुर्धारियों को एकत्र करो, हे सब धनुष चढ़ाने वालों, उसके चारों ओर डेरा डालो, उसमें से कोई न छूटने पाए, उसके काम के अनुसार उसे प्रतिफल दो, उसने जो कुछ किया है उसके अनुसार उसी प्रकार उसके साथ करो। उसका न्याय धनुर्धारियों के द्वारा पूरा किया जाता है। शास्त्रों में धनुर्धारी का पहला उल्लेख इस्माएल के विषय में मिलता है।
और परमेश्वर ने उस बालक की आवाज सुनी, और परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से हागर को पुकार कर उससे कहा, हागर, तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने जहां वो है वहीं बालक की आवाज सुन ली है। उठ, बालक को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसने पानी का एक कुआं देखा। वो गई और मशक को पानी से भर लिया और बालक को पानी पिलाया, और परमेश्वर बालक के साथ था। वो बड़ा हुआ और जंगल में रहने लगा और धनुर्धर बन गया। उत्पत्ति 21:17-2।
प्रकाशित वाक्य 11 में महान भूकंप की घड़ी रोम की वेश्या पर कार्यकारी न्याय की शुरुआत की पहचान करती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से आरंभ होती है। उस घड़ी में तीसरा हाय शीघ्र आता है और सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। तीसरा हाय ही सातवीं तुरही है। इस्लाम के तीरंदाजों को उन पर उसका न्याय लाने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो पापाई अधिकार की छाप रविवार आराधना को लागू करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं जो परमेश्वर के अधिकार की छाप सप्त आराधना को थामे रहते हैं। लूका के 21वें अध्याय में यीशु यरूशलेम और मंदिर के विनाश के बारे में शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं जो अंतिम दिनों के इतिहास का भी प्रतिनिधित्व करता है। वे प्रतिशोध के दिनों का उल्लेख करते हैं,
जो मसीहा के रूप में उनकी सेवकाई की एक आवश्यक भविष्यवाणी संबंधी विशेषता थी, जिसे उन्होंने अपनी सेवकाई की प्रारंभिक घोषणा में नासरत की कलीसिया में भविष्यद्वक्ता यशायाह से पढ़कर घोषित किया। नासरत में की गई वो घोषणा और यशायाह का वो खंड न केवल उनकी सेवकाई का बल्कि उनके शिष्यों के संदेश का और विशेष रूप से 144,000 के आंदोलन के कार्य और सेवकाई का भी प्रतिनिधित्व करते थे।
प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे दीनों को शुभ समाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं टूटे हृदय वालों के घाव बांधूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करूं और जो बंधे हैं उनके लिए कारागार का द्वार खोलूं। यहोवा के अनुग्रह के वर्ष और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन की घोषणा करूं। सब शीख करने वालों को सांत्वना दूं, सियोन में शोक करने वालों के लिए ये ठहराऊं कि राख के बदले उन्हें सौंदर्य दूं, शोक के बदले आनंद का तेल और उदासी की भावना के बदले स्तुति का परिधान, ताकि वे धर्म के वृक्ष यहोवा के रूपे हुए कहलाएं, जिससे वो महिमा पाए। वे पुराने उजड़े स्थानों को फिर से बनाएंगे, वे प्राचीन उजाड़ों को उठाएंगे और वे उन उजड़े नगरों की मरम्मत करेंगे जो बहुत पीढ़ियों से उजाड़ पड़े हैं। और परदेशी खड़े होकर तुम्हारे झुंडों को चराएंगे और विदेशियों के पुत्र तुम्हारे हलवाहे और तुम्हारी दाखबारी के रखवाले होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, लोग तुम्हें हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। तुम अन्य जातियों के धन का उपभोग करोगे और उनकी महिमा में गौरव करोगे। तुम्हारी लज्जा के बदले तुम्हें दुगुना मिलेगा और अपमान के बदले वे अपने भाग में आनंदित होंगे। इस कारण अपने देश में वे दुगुना भाग पाएंगे। उन पर सदा का आनंद रहेगा, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रेम करता हूँ, होम बलि के लिए की जाने वाली लूट से घृणा करता हूँ, और मैं उन्हें उनके काम का प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान जातियों के बीच जानी जाएगी। जो कोई उन्हें देखेगा वो मान लेगा कि वे वही वंश हैं जिसे यहोवा ने आशीष दी है। मैं यहोवा में अत्यंत आनंद करूँगा, मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर में मगन होगी, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, क्योंकि उसने मुझे धर्म के चोगे से ढांक दिया है। जैसे दूल्हा अपने को आभूषणों से सुसज्जित करता है और जैसे दुल्हन अपने गहनों से अपने को सजाती है, क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी अपनी कलियां फूटाती है और जिस प्रकार बारी उसमें बोई हुई वस्तुओं को अंकुरित कर देती है, उसी प्रकार प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धर्म और स्तुति को अंकुरित करेगा। यशाया 1:7-1:2 पर
यहेजकेल अध्याय 9 में जिन 144,000 पर मुहर की गई है, वे वही लोग हैं जो कलीसिया और संसार के पापों पर विलाप कर रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन वही समय है जब सियोन में विलाप करने वालों को सांत्वना दी जाती है और वे धार्मिकता के वृक्ष बन जाते हैं ताकि प्रभु की महिमा करें। वे प्रभु की महिमा करते हैं क्योंकि उन दिनों और उस समय प्रभु की ये वाणी है, इज़राइल का अधर्म ढूंढा जाएगा पर वो न पाया जाएगा। जो विलाप करते हैं वही मुहर किए गए हैं और वही पुराने उजाड़ स्थानों का निर्माण करेंगे, जो पहले की उजाड़ों को फिर से खड़ा करेंगे और जो अनेक पीढ़ियों की उजाड़ पड़ी नगरों की मरम्मत करेंगे। वे प्रभु के याजक कहलाएंगे और लोग उन्हें हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। 144,000 की धार्मिकता समस्त राष्ट्रों के सामने अंकुरित होगी जब महान भूकंप की घड़ी में उन्हें पताका की भांति ऊंचा उठाया जाएगा। उनकी धार्मिकता क्रमशः उत्पन्न की जाती है, क्योंकि ये जैसे पृथ्वी अपनी कली निकालती है और जैसे बगीचा उसमें बोई हुई वस्तुओं को उगा देता है, वैसे ही प्रभु परमेश्वर धार्मिकता और स्तुति को अंकुरित करेगा। 144,000 की मुहर बंदी 1 सितंबर 2001 को अंतिम वर्षा के आगमन के साथ शुरू हुई, तभी पृथ्वी की कलियां निकल आई। यशाया ये बताता है कि कलिया कब फूटती है।
माप के अनुसार जब वो फूटता है तो उससे वाद विवाद करेगा। वो पूर्वी पवन के दिन अपनी कठोर हवा को रोकता है, इसलिए इसी से याकूब का अधर्म शुद्ध किया जाएगा और यही उसका सारा फल है उसके पाप को दूर करने के लिए। जब वो वेदी के सब पत्थरों को उन चूने के पत्थरों के समान कर देगा जो टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, तब उपवन और मूर्तियां खड़ी न रहेंगी। यशाया 27:8-9।
पूर्वी पवन के दिन में, जो उसकी कठोर पवन है जिसे वह रोकता है, कलियों का फूटना तब शुरू होगा जब वर्षा मापी जाएगी। स्टेथ का अर्थ रोक तर्क रखना है। जब प्रकाशित वाक्य के सातवें स्वाध्याय के चार स्वर्गदूत चार वायुओं को रोक कर रखते हैं, तब 144,000 पर मुहर लगाना आरंभ होता है। उस समय अंतिम वर्षा फुहार के रूप में संयम से शुरू होती है, क्योंकि उस पद में माप शब्द का अर्थ संयम है। 144,000 पर मुहर लगाने की अवधि की शुरुआत में अंतिम वर्षा मापी हुई होती है और उस अवधि के अंत में वह अपरिमित होती है।
परमेश्वर का आत्मा की वो महान उंडेली जो अपनी महिमा से समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करती है, तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे पास ऐसे प्रबुद्ध लोग न हों जो अनुभव से जानते हों कि परमेश्वर के साथ सहकर्मी होना क्या अर्थ रखता है। जब हम मसीह की सेवा के लिए पूर्ण पूरे मन से समर्पण कर देंगे, तब परमेश्वर इस तथ्य की पुष्टि पे अपनी आत्मा को बिना माप उंडेल कर करेगा। परंतु ये तब तक नहीं होगा जब तक कलीसिया का सबसे बड़ा भाग परमेश्वर के साथ सहकर्मी नहीं बन जाता। जब स्वार्थ और भोग लिप्सा इतनी प्रकट हों, जब ऐसी मनोवृत्त प्रबल हो कि यदि उसे शब्दों में बांधा जाए तो वो कैन के उस उत्तर को ही व्यक्त करे, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, तब परमेश्वर अपनी आत्मा नहीं उंडेल सकता। यदि इस समय का सत्य, यदि चारों ओर गहराते हुए चिन्ह जो ये प्रमाणित करते हैं कि सब बातों का अंत निकट है, उन लोगों की सुप्त ऊर्जा को जो सत्य को जानने का दावा करते हैं जागृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो जो प्रकाश अब तक चमक रहा है उसके अनुरूप अंधकार इन आत्माओं को घेर लेगा। अंतिम लेखा जोखा के महान दिन में अपनी उदासीनता के लिए वे परमेश्वर के सामने जरा सा भी बहाना प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, ये बताने के लिए कि वे परमेश्वर के वचन के पवित्र सत्य के प्रकाश में क्यों नहीं जिए, चले और काम किए और इस प्रकार अपने आचरण, अपनी सहानुभूति और अपने उत्साह के द्वारा पाप से अंधकारमय संसार के सामने ये क्यों न प्रकट किया कि सुसमाचार की शक्ति और वास्तविकता का खंडन नहीं किया जा सकता, उनके पास कोई कारण प्रस्तुत करने को न होगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, 21 जुलाई 1896।
अंतिम वर्षा और 144,000 के मुद्रांकन का परीक्षण काल तब आरंभ होता है जब पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का मापन किया जाता है, क्योंकि गेहूं और जंगली घास कटनी के समय तक पहुंच चुके होते हैं। ये वर्षा दोनों वर्गों को परिपक्वता तक ले आती है, फिर परीक्षण काल के अंत में गेहूं और जंगली घास अलग कर दिए जाते हैं और तब गेहूं अनुभव से जानेंगे कि परमेश्वर के साथ मिलकर श्रमिक होना क्या अर्थ रखता है। वे तब मसीह की सेवा के लिए पूर्ण पूरे हृदय का समर्पण करेंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा को बिना माप उंडेल कर इस बात की पुष्टि करेगा। कड़ी पूर्वी वायु का दिन 11 सितंबर 2001 को आ पहुंचा और अंतिम वर्षा के संदेश के तौर पर प्रचारित नकली शांति और सुरक्षा के संदेश बनाम परमेश्वर के प्रति शोध के दिन की पहचान कराने वाले संदेश को लेकर हबक्कूक की बहस शुरू हुई। उसी समय पौधे गेहूं और कुकरमय दोनों कलियां निकालने लगे और वो फल उत्पन्न करने लगे जो वे शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के न्याय के समय प्रकट करेंगे।
फिर ये दृष्टांत सिखाते हैं कि न्याय के बाद कोई अनुग्रह काल नहीं होगा। जब सुसमाचार का कार्य पूर्ण हो जाता है, तब तुरंत ही भले और बुरे के बीच पृथक्करण हो जाता है और प्रत्येक वर्ग की नियति सदा के लिए निश्चित हो जाती है। Christ's Object Lessons 133।
ये हेस्केल के 8वें अध्याय में एक समूह सूर्य को प्रणाम करता है और 9वें अध्याय में दूसरा समूह परमेश्वर की मुहर प्राप्त करता है। लूका के 21वें अध्याय में मसीह 144,000 की पहचान कराते हैं और वो एक ऐसा चिन्ह प्रस्तुत करते हैं जो पृथ्वी के इतिहास की अंतिम पीढ़ी को चिन्हित करता है। उन्होंने वो चिन्ह बताया जिसे यरूशलेम के विनाश से बच निकलने के लिए मसीहियों को पहचानना चाहिए।
और जब तुम देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिरा हुआ है, तब जान लो कि उसका उजाड़ निकट है। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों की ओर भाग जाएं और जो उसके बीच में हों वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों वे उसमें प्रवेश न करें, क्योंकि ये प्रतिशोध के दिन है, ताकि जो कुछ लिखा गया है वो सब पूरा हो। लूका 21:20-22।
यीशु ने पंक्ति दर पंक्ति उस चिन्ह की और भी भविष्य सूचक विशेषताएं बताईं, क्योंकि उनके वचन केवल लूका द्वारा ही नहीं बल्कि मत्ती और मरकुस द्वारा भी लिखे गए हैं।
और राज्य का ये सुसमाचार सारे संसार में सब जातियों के लिए गवाही के लिए प्रचार किया जाएगा, और तब अंत आएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसके विषय में भविष्यद्वक्ता दानियेल ने कहा था, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़ता है वो समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। मत्ती 24:14-16। और पहले सुसमाचार का प्रचार सब जातियों में होना चाहिए, पर जब वे तुम्हें ले जाए और सुपुर्द करें, तो पहले से ये चिंता न करना कि क्या बोलोगे, न ही पहले से तैयारी करना, परंतु जो कुछ तुम्हें उस घड़ी दिया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है, और भाई भाई को मृत्यु के लिए पकड़वाएगा, और पिता पुत्र को, और बच्चे अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और उन्हें मरवा देंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। पर जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसके विषय में भविष्यद्वक्ता दानियेल ने कहा है, वहां खड़ी देखो, जहां उसे नहीं होना चाहिए, जो पढ़ता है वो समझे, तब जो यहूदिया में हैं वे पहाड़ों की ओर भाग जाएं। मरकुस 13:10-14।
प्रतिशोध के दिनों की अंतिम और पूर्ण पूर्ति अर्थात सात अंतिम विपत्तियां दो वर्गों पर घटने से पहले राज्य का सुसमाचार सब राष्ट्रों में प्रचारित और प्रकाशित किया जाना चाहिए। सुसमाचार का संदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय राष्ट्रों को दिया जाता है, जब 144,000 को एक ध्वज के रूप में ऊंचा उठाया जाता है। प्रतिशोध के दिन बाबुल की व्यभिचारिणी पर होने वाले कार्यकारी न्याय की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून से शुरू होती है और तब समाप्त होती है जब मिकाएल खड़ा होता है और मानव के लिए परख का समय समाप्त हो जाता है, और परमेश्वर का क्रोध सात अंतिम विपत्तियों में उंडेल दिया जाता है। समय की वो अवधि घड़ी है जिसकी पहचान मरकुस करता है, और महान भूकंप की घड़ी, और वो घड़ी जब 10 राजा इस पर सहमत होते हैं कि वे अपना सातवां राज्य पापसी को दे दे। जब अंतिम व्यक्ति उस सुसमाचार को स्वीकार कर लेता है जो सब राष्ट्रों में प्रचारित किया जाता है, तब अनुग्रह का समय समाप्त हो जाता है और परमेश्वर का कोप बिना दया के उंडेला जाता है। वो काल तब आरंभ होता है जब पताका ऊंची उठाई जाती है और सुसमाचार सब राष्ट्रों में घोषित किया जाता है, और तब समाप्त होता है जब पताका द्वारा घोषित, प्रचारित और प्रकाशित सुसमाचार संदेश पर अंतिम व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है। वही समय प्रतिशोध के दिन है। लूका के सुसमाचार के अध्याय 21 में यीशु उस इतिहास की सटीक पहचान कर रहे हैं, क्योंकि वे उस अंतिम पीढ़ी की पहचान कर रहे हैं जो उनके दूसरे आगमन से पहले नहीं मरेगी। वे एक चिन्ह बताते हैं जिसे भविष्यद्वक्ता दानियेल द्वारा कही गई उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के रूप में बताया गया है। ये चिन्ह तब है जब वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ी हो, और जब वो जहां उसे नहीं होना चाहिए वहां खड़ी हो, और यही वो समय भी है जब यरूशलेम सेनाओं से घिरा हुआ होगा। सन 66 में जब सेस्टियस ने यरूशलेम को सेनाओं से घेर लिया, तब यरूशलेम के ईसाई नगर से भाग गए, और सिस्टर वाइट बताती हैं कि उस विनाश के दौरान जो अंततः सन 70 में समाप्त हुआ, एक भी ईसाई नहीं मरा। सेस्टियस ने घेराबंदी शुरू की और फिर जाहिर तौर पर अज्ञात कारणों से पीछे हट गया, और शहर के ईसाई उस संकेत से जुड़ी चेतावनी के अनुसार भाग निकले। सन 70 में टाइटस ने पुनः घेराबंदी करके विनाश को पूरा किया। सेस्टियस की घेराबंदी वह शुरुआत थी जिसे प्रथम यहूदी रोमन युद्ध कहा जाता है, और टाइटस द्वारा की गई घेराबंदी और विनाश उस प्रथम यहूदी रोमन युद्ध का अंत था। पूरा इतिहास 3.5 वर्ष तक चला, एक घेराबंदी से शुरू होकर एक घेराबंदी पर ही समाप्त हुआ, और उसकी शुरुआत में परमेश्वर की प्रजा के लिए एक चिन्ह निहित था। इस इतिहास को मसीह ने परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन कहा। ये उनकी सेवकाई का एक ऐसा विशिष्ट तत्व था जिसे वे पहचान देने वाले थे। वे दिन रोम की व्यभिचारिणी पर होने वाले दंडात्मक न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से आरंभ होता है और तब समाप्त होता है जब मानव का अनुग्रह काल बंद हो जाता है। बाबुल की व्यभिचारिणी पर दंडात्मक न्याय की शुरुआत में 144,000 को एक ध्वज के रूप में ऊंचा उठाया जाता है, जो एक चिन्ह है। जब परमेश्वर की अन्य भेड़ें उस चिन्ह को देखेंगी तो उन्हें बाबुल से भाग निकलना है, जिसका विनाश यरूशलेम के विनाश द्वारा प्रतीकित किया गया था। हम अगले लेख में लूका अध्याय 21 पर विचार करना जारी रखेंगे।